તારીખ 19/12/1994 શ્રી મદ્રાસચંદ્ર પત્રાંક 397 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 94
तो बताइए समान है द्रव मोक्षेच्छा द्रव जो पात्रता ऐसी पात्रता वाले बिना जीव की प्रवृत्ति में समझ में यथार्थता मैंने यथार्थ दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता क्या कहां से आत्मकल्याण की नई युक्ति है मिलती है मूल कहां से आत्मकल्याण का मूल कहां से शुरू हो गया है इस प्रश्न के समाधान में ऐसा दिया मोक्षेच्छा किसी भी कीमत पे हमें मुक्त हो जाना है हमें संसार के जीवन में नहीं रहना है कोई भी कीमत लग जाए तो सब कुछ चुकाने के लिए तैयार है ऐसी कोई दृढ़ मोक्ष इच्छा आती है तो पात्रता उसी वक्त पैदा होती है पात्रता में हमें कभी देर नहीं करते और प्रत्यक्षण ये परिणाम स्वयं पात्रता को लेकर ही जन्म पा पाता है ऐसी पात्रता आए बिना जीव की प्रवृत्ति में समझने यथार्थता नहीं आती यानी यथार्थ दृष्टि को उसको नहीं मिलता और ऐसे हुए बिना आगे की कोई बात की अपेक्षा रखने में आए तो व्यर्थ ही है तो पात्रता ही नहीं है तो फिर आगे की कोई दशा प्राप्त हो सकती है तो बात तो कहने के लिए ही व्यर्थ है कुछ नहीं कहा जाता है ऐसा अवश्य निश्चय आए बिना सत प्राप्ति के लिए जीव काल्पनिक उपाय करने लग जाते हैं ऐसा निश्चय नहीं होता है तो जीव धार्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धर्म साधन की प्रवृत्ति करने लग जाता है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है अनंत काल में अनंत उपाय किए नियम नियम संयम आप किए अनंत काल में अनंत उपाय किए परंतु मूल में नियम में जो करने योग्य था उसी बिना ही आगे की बातों का तत्वाभ्यास वगैरह आगे की बातों का अभ्यास करने लग जाते हैं तो मार्ग के बजाय उन मार्ग से मार्ग तो नहीं मिलता है दूर जाने का इसलिए ऊपर कहा हुआ या ऊपर दिया दिया हुआ जो क्रम उसको सत्पुरुष का मंत्र समझ करके उसका मूल्यांकन होना चाहिए ऊपरी पात्रता नाम जी सर्वप्रथम सजीवन मूर्ति की खोज करता है वो मात्र सजीवन मूर्ति को पाता है उनकी पहचान करता है और इसके वचन बल से यह निर्वाण मार्ग को भी प्राप्त होता है कोई प्रश्न है हाँ उसके वचन बल से सत्पुरुष के जो वचन है उस वचन को धारण करने का भी पुरुषार्थ होना चाहिए अगर उस वचन को अंगीकार करने का पुरुषार्थ जिसमें नहीं है तो उसका कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन जो सत्पुरुष को चाहता है, सत्पुरुष को खोजता है, चाहता है और उसको मिल जाता है, वो पहचान लेता है, तो उनके वचन में बहुत ताकत भरी है, वो भी दिखता है। तो वचन में भी बहुत ताकत है। जैसे ये हम कुछ दृष्टांत लेते हैं कि किसी को वचन सिद्धि का योग हो, क्या कि जिस जिसके मुंह से कुछ निकल जाएगा समझ जाता है, इसको वचन सिद्धि योग कहते हैं, चमत्कार। आत्मकल्याण के लिए मुख्य जीव को सत्पुरुष के वचन सिद्धि योग जैसे भाषित होते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उसको वचन बल भी कहते हैं। तो इसका प्रभाव जिस आत्मा की पवित्र भूमि में से जो निकला हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस भूमि से वो बात उगी है, उठी है, उसको इस तरह से दृष्टिकोण में लेकर के, दृष्टि में लेकर के तो सत्पुरुष के वचन को अपने आत्मा में धारण करता है, आत्मसात करता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका मेरा बात है।
सत्पुरुष के वचन को हृदय में उतारता है तो उसमें विलंब करता है
नहीं, तो करेगा
दर्शन तत्काल करेगा।
जिसको प्यास भी लगी हो और ठंडा मीठा पानी मिलता, क्या ठंडा भी हो और मीठा भी हो, तो क्या वो पीने में देर लगेगा, विचार करेगा अभी तुम तो पीऊ, मुहूर्त तो अच्छा है पीने का, ऐसा देखेगा क्या खाने पीने में मुहूर्त निकालेगा और झपक करके पी जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते नहीं कहीं पिएगा, जल्दी जल्दी पीने लगेगा, पूरा पी जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। हम कहते हैं कि जो जीव गिनातम के आश्रय को समझे बिना किसी भी बात का आग्रह करके विवाद करता है और अपनी कल्पना अनुसार प्रतिपादन करता है आग्रहवादी बात, ऐसे जीव को कैसे दोष प्राप्त हो जाता है, वो तो कितना अधिक दोष में आ जाता है, यह बात है। सौ एक करुणा से विचार करने की अफसोस है कि जीव ऐसा करता है और करुणा आती है करने पर सारे को नुकसान हो जाएगा, उसके आत्मा का आवरण लग जाएगा और आवरण हटाने में उनको बहुत कठिनाई हो जाएगी।
जिनागम के आशय से क्या कहना चाहिए?
जिनागम का आशय है सिर्फ आत्मकल्याण करना, जैसे तैसे भी राग द्वेष मोह को मिटा करके वितराग होना, ये वितराग मार्ग में वितरागी आगम का आशय है, वही आत्मकल्याण है। ऐसे आशय को छोड़ करके शायद संकेत या किसी भी प्रकार के मुद्दा को उठा करके विवाद करना, विवाद करने में क्या होता है कि इनकी बात सामने वाले की बात झूठी है, मैं जो कहता हूं वो सही है, उसका आग्रह। तो सामने को वाले को झूठा ठहराना वही लक्ष्य है उसमें, आत्मकल्याण का कोई लक्ष्य नहीं है उसमें। क्या ऐसा आग्रह में लक्ष्य क्या है कि अगले को झूठा ठहराना है, मेरा आत्मकल्याण कैसे होगा, उनका कैसे होगा, वो कोई बात उसमें नहीं, ये बात हो जाती है। वर्तमान में जिसको जिन सूत्र के नाम से पहचानने में आता है, देखो मान्य नहीं करते वर्तमान में जो पतंजलि शास्त्र है उसको मान्य नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में जिसको जो सब जीव सूत्र के नाम से पहचानने में आता है वो पहचानते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये भाषा कैसे आई है। तो वर्तमान में जीव सूत्र के नाम से बोला जाता है, उसमें शारीरिक संकेत नहीं है, ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है, शास्त्र में भी ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है, हमारा देखा हुआ है ऐसा कहते हैं, तो इसमें कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है। यह बात परंपरागत तथा अन्य कितने ग्रंथों में से आगे से चली आई है, कितना ख्याल है साधु लोग ने भी इतने नहीं पढ़ा होगा, उतना कृपा लोग ने मतलब दिए थे शास्त्र जिला जिसको कहते हैं, उसमें भी वो बात तो नहीं है कि क्षाई शक्ति किस कारण नहीं होता है। तो फिर ये बात कहां से चली कि दुष्परंपरा से आगे से कोई तो चली आई है, और कितने ग्रंथ में भी वो बात, दूसरे अन्य ग्रंथ में भी वो बात है, ऐसा हमने पढ़ा है और सुना भी है, और यह वचन मिथ्या है कि झूठ है, वृषा झूठ है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, हम ऐसा यह नहीं कहना कहना चाहते हैं सीधा कि ये बात झूठी है या मिथ्या है, फिर भी यह वचन जिस प्रकार से लिखा है वो एकांत अभिप्राय से ही लिखा है ऐसा हमको लगता नहीं है, ऐसा हमको भाषित नहीं होता है। कदापि ऐसा मानो कि यही वचन एकांत ऐसा ही है, मान लो ऐसा ही एकांत वचन है, शायद शक्ति किस कारण होता है, तो भी किसी भी प्रकार से आकुलित होना योग्य नहीं है, तुमको क्षय शक्ति नहीं होगा क्योंकि हमारा तो जन्म इस काल में हुआ है, क्या करे आदत प्रदान होता है, तो उस तरह से ऐसे आशंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सब बातें यह सब व्याख्याएं यदि सत्पुरुष के आसन से जानी है तो फिर सफलता भी इसकी नहीं है। ऐसे आगम की बातों को ज्ञानी पुरुष के चरण में बैठ करके समझना जरूरी है, तो आत्मकल्याण का जो आशय है वो कहां से कैसे निकलता है वो बता सकते हैं, अपने आप पढ़ेंगे तो उसमें नुकसान होने की परिस्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए यह सब व्याख्या यदि सत्पुरुष के आशय से जानी नहीं तो फिर इसकी सफलता भी नहीं।
सत्पुरुष के आश्रय से बोला, आत्मा के आश्रय से नहीं,
आश्रय मैंने गिरा था आत्मकल्याण का, मैंने जिला की सब बातों में आत्मकल्याण का आश्रय किस तरह से होता है वो दृष्टि सत्पुरुष की होती है, कोई सब कुछ पढ़ ले और समझ ले ऐसा जिनागम में लगता नहीं, ऐसा जिनागम का अभ्यास से कोई फायदा होता नहीं, उनका समझ में आ जाता है।
सत्पुरुष के आशय को कैसी पात्रता में आया हुआ जीव समझ सकता है?
उस सत्पुरुष को जो मात्र चाहता है पहचानता है उसी पात्रता में जो आता है आश्रय को पकड़ सकता है, इसके बिना ऐसे योगे योगे मान ले तो सत्पुरुष का आशय समझ में आता नहीं, एक बात। दूसरी बात वो है कि जिसको सिर्फ आत्मकल्याण ही करना है, दृढ़ मोक्षा मोक्ष ऐसे पूर्णता का लक्ष्य वाले को अभी जो लाभ हुई यथार्थ समझ आती है तो वो सत्पुरुष के आश्रय को या बिना गुरु के आश्रय को श्री गुरु में पकड़ सकता है, क्योंकि उसने यथार्थता ही है। इसलिए
सत्पुरुष के आशय को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो उसमें क्या हमारी भूल रहती है जिसके कारण हम नहीं समझ पाते हैं?
हमारा संसार का लक्ष्य है अनादि से, दृढ़ मोक्ष इच्छा पूर्णता का लक्ष्य नहीं गया, यही हमारी दिख रह गई। देखिए हम यहाँ से उठेंगे 10 बजे, समय स्वाध्याय का पूरा हो जाएगा, हमारे चप्पल जूते में पैर रखेंगे, इसके पहले यहाँ से उठकर वहां जाए, इसके पहले हम निश्चय कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, जगह जाना है, घर जाना है, कहीं और जगह जाना है, स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है, करते कहते नहीं करते, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा डेस्टिनेशन फाइनल करने के बाद हम चप्पल में पैर रखते हैं, जूते में पैर रखते हैं। छोटे से छोटे काम में भी यही सही कार्य पद्धति होती है, वरना बाहर निकल करके चलेंगे किस कहाँ चलेंगे, किस दिशा में चलेंगे, रास्ता तो उधर भी जाता है उधर भी जाता है। तो हमको पूरा संसार छोड़ना है और हमें धर्म की प्राप्ति करनी है तो हमें कहां पहुंचना है, हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, उसका निर्धार किए बिना धर्म जैसा महान कार्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहां से होगा। इसलिए ये शुरुआत का नियम बताया गुरुदेव ने कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। अगर किसी ने ऐसा निर्धार नहीं किया, उसने शुरुआत नहीं की है, वो मान ले कुछ कुछ भी माने, उसकी शुरुआत हुई भी नहीं है। ये इतना नक्कर सत्य है, हार्ड फैक्ट, इसके बिना किसकी शुरुआत होती नहीं है।
तो मतलब हम शास्त्र पढ़ के भी हम आशय को नहीं समझ पाते हैं? हम शास्त्र पढ़ के भी आशय को
नहीं समझ पाते, शास्त्र पढ़ लेते हैं आशय नहीं समझते, और इसलिए कहीं हमारी समझ गैर समझ भी हो जाती है और उसका नुकसान भी हमको आ पड़ता है, ऐसा बनता है। तो स्पष्ट लिखते हैं कि ऐसे जो गंभीर शास्त्र है सत्पुरुष के आश्रय में पढ़ना, समझना, सत्पुरुष के चरण में देखकर समझना, इसके बिना तुम अपने आप समझने को जाएगा, शास्त्र शस्त्र हो जाएगा।
नहीं समझने का कारण तो मेन यही है कि हमने नक्की नहीं किया कि मेरे को संसार से
मुक्त होना है,
मेन बात ये
नक्की नहीं किया है तो इस भूमिका की पात्रता भी नहीं आई है। बिना पात्र, बिना पात्र मैंने अन अधिकारी को शास्त्र पढ़ने के शास्त्र में मना है, क्या शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र में होगा कि तुम पढ़ो कि अन अधिकारी के लिए शास्त्र में है, अधिकारी के लिए शास्त्र है, उनके शास्त्र में है। बात तो अपने प्रयोजन की तो पढ़नी चाहिए, बिना अधिकार हम पढ़ेंगे गड़बड़ हो जाएगी बड़ी।
तो मतलब शास्त्र के आशय को नहीं समझ पाते हैं तुम जिन आज्ञा पे पैर रख के चलते
हैं? शास्त्र आ गया, दिन आ गया, गुरु आ गया, सत्पुरुष के आ गया, सब पर आज्ञा को कुचल करके पैर रख के क्या पैर से कुचल करके आगे जा रहे हैं, हमको भव्य का भाई नहीं, ये बात हो जाती है।
यही कारण है हम प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत में भेदरेखा नहीं छाट पाते हैं, क्योंकि हमको आशय पकड़ में नहीं आता।
आशय पकड़ में नहीं आता है तो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत का भेद कहाँ से छाटेंगे? प्रयोजन अप्रयोजन भूत का दृष्टिकोण पैदा नहीं होता बिना पात्र का, ऐसी दृढ़ पक्ष इच्छा हुए बिना प्रयोजन रूप का तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो होता ही नहीं।
पूर्णता के लक्ष्य नहीं करते हैं तो हम तो पाया में सत्पुरुष की आज्ञा के ऊपर भी पैर रख के खड़े हैं, फिर हम सोचते कि ये नहीं होता मन नहीं होता
वो से होगा से
फर्स्ट
रेशन जो है हो ही जाएगी, कहीं न कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी। तो बोले है कि ऐसी सब बातें जो सत्पुरुष के आश्रय से जानी नहीं तो सफल नहीं, जानने में कोई सफलता नहीं है। और इसके बदले में कदापि धारो मानो कि जिनागम में लिखा हो कि चतुर्थ काल की तरह पंचम काल में भी बहुत जीव मोक्ष में जाने वाले हैं, मान लो एक तर्क उठाया है तो में ऐसा लिखा है कि अभी कोई यहां से नहीं जाएगा, अगर लिखा होता तो क्या तुम चले जाते क्या? ऐसा लिखा है कि नहीं जाएगा इसलिए हम नहीं जाएंगे क्या? और लिखा है इसलिए जाएंगे क्या? जाना नहीं जाना नहीं लिखने से क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं। तो क्यों पकड़ते हो आग्रह करते हो इस बात का? ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा
धन्यवाद।
उस ऊपर की बात के बदले में मैंने उल्टा में ऐसी बात मान लो कि हो ऐसी बात है कि जिनागर ने ऐसा लिखा हो कि चतुर्थ काल की तरह पंचम काल में भी बहुत जीव मोक्ष में जाने वाले हो तो इस बात का श्रवण क्या तुमको और हमको कोई आत्मकल्याण कर लेता है? ऐसी बात सुनने से कोई आत्मकल्याण हो जाता है या मोक्ष में चले जाएंगे? चलो हमने सुन ली जान लिया कि इसका तो भी मोक्ष होता है तो ऐसा जानने से कोई मोक्ष में चले जाएंगे क्या? हो जाएगा मोक्ष इसका तो मोक्ष के लायक जो पुरुषार्थ करेगा उसका मोक्ष होगा। लिखना नहीं लिखने से क्या मतलब है? तो क्यों पूरे वाद विवाद में चल चले जाते हैं?
क्यों
देखना
अपनी योग्यता को
बढ़ाना ठीक है, काल को क्यों देखें? अपनी योग्यता को देखें, आपको देखने से क्या मतलब है? कोई मतलब
वैसे जिसको जिधर का लक्ष्य होता है उसके दृष्टांत को सामने रखता है, जिसको काम नहीं करना रहता है वो उस दृष्टांत को सामने रखता है, जिन्हों मतलब जो नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का बात को ढूंढता है कहीं ना कहीं, और जिसको करना रहता है वो रोज दर्शन करने जाता है जिनेंद्र परमात्मा के, तो रोज ये भावना पाता है कि मेरे को ऐसा बनना है, तो दैव क्षेत्र काल भाव और भाव देखेगा कैसे?
ऐसा है जो लड़का पढ़ने में लायक नहीं है और गुजरत में बढ़ नहीं सकता है, इसका खास शब्द है ठोस, तो उसको पढ़ना आता ही नहीं है तो फेल होता है, तो फिर इनके जो माँ बाप होते हैं गार्डियन होते हैं उन्होंने क्यों फेल हुआ? नहीं अकेले थोड़ा फेल हुआ, हमारे राष्ट्र में तो इतने इतने अच्छे अच्छे फेल होंगे ऐसा पकड़ेगा वो ऐसी बात पकड़ेगा क्यों? तो उसको फिर उसको तो पास होने के कोई ताकत है नहीं, शक्ति नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और भाग्य में होता है फिर उन्होंने कहा तो फेल ही हो जाते हैं। क्या कहेंगे और कि भाग्य में पास होने का नहीं है फेल होने का है तो फिर हो जाते हैं? तो बहुत पढ़ते हैं, नहीं तुम पढ़ता नहीं था, तुमने पढ़ाई नहीं किया और नहीं किया और नहीं किया, अरे बहुत पढ़ाई करने वाले भी फेल हुए हैं आप नहीं जानते, जानते हैं हमारे क्लास में बहुत पढ़ाई करने वाले भी फेल हो गए हैं, तो ऐसे पकड़ेगा मैं ऐसे। जिसको पुरुषार्थ नहीं करना है वो जिनागम में से वो बात उठाएगा कि देखो जिनागम में अभी मोक्ष नहीं बोला है, अभी क्षय संकेत नहीं बोला है, अभी फलानी बात नहीं है, तुमको क्या करना है वो बताना है, तुमको इस बात में आगे बढ़ना है, तुमको मोक्ष मार्ग में जाना है, तुम्हारा लक्षण बताना है, तो ये बात ऐसी होती है। इसलिए ऐसी बात सुनने से कोई कल्याण नहीं होता, अथवा ऐसी बात लिखी हो तो भी यह बात मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं होता। वहां जिना तो से लिख दिया इसलिए मोक्ष प्राप्ति का किसी को कारण बन जाता है, ऐसा नहीं होता। कारण थे यह मोक्ष प्राप्ति जिस दशा को कही है वही दशा की प्राप्ति ही सिद्ध है, उपयोगी है, कल्याण करता है। सुनना तो श्रवण तो मात्र बात है, इस दशा की जो प्राप्ति है उसकी उपयोगिता है वो तो उस दिशा प्राप्त करने से होती है, बात से क्या लेना देना है। और इसलिए प्रतिकूल वचन भी मात्र बात है, अनुकूल वचन भी मात्र बात है, मोक्ष जाने का अनुकूल वचन भी मात्र बात है, प्रतिकूल वचन भी मात्र बात है। बात कुछ भी हो हमें अभी पुरुषार्थ करना है, ये आना चाहिए अंदर में कि हमको पूर्णता का लक्ष्य करना है। पूर्णता का लक्ष्य क्यों करें, मोक्ष तो है नहीं, पूर्णता माने मोक्ष, मोक्ष तो अभी है नहीं, इसका लक्ष्य करने से क्या फायदा है, तुम तो शुरुआत होने वाली नहीं। चली थी गुरुदेव से और हमारे जो नाम दोषी जो निर्देश निकला है उसमें इसकी चर्चा आई है। गुरुदेव को किसी ने प्रश्न पूछा और इसका उत्तर ऐसे दिया है कि यहाँ पूर्णता माने मोक्ष पर्याय की बात है, त्रिकाली पूर्ण दृढ़ की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने की बात है। बाद में वो खोजेगा अपने स्वरूप को और बाद में उसको इसका निश्चय और भाव आसन होगा, वो बाद में होता है। मोक्ष पर्याय एक समय ही नहीं है, लेकिन वो अनंत काल रहती है, एक एक समय करके वैसी की वैसी रहती है, वही चरण अवस्था है आत्म कल्याण की। उसका डेस्टिनेशन धक्के किए बिना परिणाम की चाल किस तरह चल चालू होगी, किस दिशा में चालू होगी, वही नहीं
सकते।
फिर आएगा अगर ऐसा आत्मकल्याण का निश्चय दृढ़ अपेक्षा होगी, उसका शिक्षण मिलेगा और उसको सत्पुरुष के लिए खोज चलेगी, सत्पुरुष को पहचानेगा, बाद में अपने स्वरूप को पहचानेगा, फिर अपने स्वरूप का लक्ष्य करके आश्रय करके संतुष्ट को प्राप्त करके मोक्ष के साधक पहुंचेगा, ऐसा क्रम है बीच में। और गुरुदेव की उपस्थिति में भी हम लोगों में वो बात चली थी, तो किसी को लगा कि पूर्णता के विषय में गुरुदेव ने दृढ़ दिया होगा, तो ये तो उपाध्याय मंदिर के डेकन साहिब की दीवार पर ये सूत्र लिखा हुआ है, तो गुरुदेव ने ये सूत्र तो लिखवाया है या दिया है, तो उसमें ध्रुव लिखा होगा। तो हमने बोला कि आप पूछ लीजिए गुरुदेव को, गुरुदेव तो मुझे विराजमान है। हमारे तो जो चर्चा करने वाले थे वो गए भी, गुरुदेव को पूछा कि पूर्णता माने पूर्ण द्रव है या मोक्ष पर्याय है, तो नहीं है तो मोक्ष पर्याय की बात है, तो कुछ शुरुआत कैसे होती है तो ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि किस तरह से शुरुआत होती है। बाद में पूर्ण द्रव का लक्ष्य आता है वो बाद में आता है, पहले वो नहीं आता है, पहले ये आता है। इसका कारण भी वो कि जीव को संसार का लक्ष्य है, उसको कितनी संपत्ति चाहिए, दुनिया भर की संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ तो उनका लक्ष्य जो है वो पूरा एक दफे लक्ष्य में लक्ष्य के सामने लक्ष्य बदलता है, डेस्टिनेशन के सामने डेस्टिनेशन बदलता है, फिर अंतर को चलती है स्वरूप के सत्पुरुष के, फिर बाद में सत्पुरुष बनता है।
ऐसे बिना सत्पुरुष की खोज चले अंतरंग से पहचान हो सकती है? बिना अंतरंग में सत्पुरुष की खोज चले पहचान हो सकती है?
जिसको जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा में भी तीव्र जिज्ञासा होती है, उसको पहचान होती है। वो बात 254 में लिखा है, सत्पुरुष में परमेश्वर मुक्ति की बात चली है ना 254 में, वहां लिखा है
और एक प्रश्न है कि जैसे किसी को पहचान अभी हो और परिणमन बाद में शुरू हो, ऐसा हो सकता है?
वो भी नहीं बताया। पहचान होती है तो परिणमन भी पहचान के भूमिका का चालू हो जाता है, इस भूमिका का तो चालू हो ही जाता है। देखिए, कोई हर्ष का प्रसंग होता है, कोई शोक का भी होता है। संसार में दो प्रकार के प्रसंग ऐसे होते हैं जिसमें फीलिंग बहुत आउट होती है। अब ये हर्ष शोक का जो प्रसंग है उसका समाचार मिलते ही हर्ष शोक चालू होता है या बाद में मुहूर्त निकाल करके चालू होता है? तो सुनते ही हर्ष का समाचार हो तो हर्ष चालू हो जाएगा, शोक का समाचार हो तो, जैसे हम घर में बच्चा जन्म होता है, दसवीं साल के बाद लड़के का बड़ा लड़का हुआ तो हर्ष बाद में करेंगे, ऐसा होता है। पार्टी बाद में हो सकती है लेकिन हर्ष के परिणाम बाद में नहीं हो सकते।
वो सब तो पूछना भी नहीं पड़ता।
महात्मा के योग से इसका अलौकिक स्वरूप को पहचानना अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिले तो उनका अलौकिक स्वरूप को पहचानना कैसे पहचानना, उत्तर देते हैं। पहचानने की परम तीव्रता रखने तो पहचाना जाएगा, बस संक्षिप्त में उत्तर दिया है। बिना जिज्ञासा पहचान होती है कि नहीं होती है? परम तीव्रता होती है उसको पहचान होती है। सामान्य तीव्रता, सामान्य जिज्ञासा में भी, जिज्ञासा से भी पहचानने में नहीं आता
है। इसमें ट्रायल वगैरह वाला प्रॉब्लम लगता है कि नाली पुरुष को पहचानने के लिए वो ट्राई करते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी उसमें सफल भी होते हैं, कभी निष्फल भी होते हैं। जैसे
तो सफल क्यों होते हैं कि जो तीव्र परम जिज्ञासा या परम तीव्रता से जिसको पहचानने की जिज्ञासा होती है वो सफल होते हैं, पर जो ऊपर ऊपर से चलते हैं वो सफल नहीं होते हैं।
नानीपुर नहीं भी होते हैं, जैसे कि हमने माना कि नानीपुर उसका हम पहले ये करेंगे, कोशिश करेंगे उनको पहचानने की, अगर सही में होंगे तब पहचान होगी, सफलता होगी, नहीं होगा फिर उनके
ऐसे आप बोले के तो किसी को बिना मानेंगे, बिना पैसा के मानेंगे कैसे मानेंगे?
नहीं, जैसे उनके वचनों से एफेक्टेड होते हैं लोग।
इसमें क्या है, आपने पहचान करके माना या ऐसे बिना पहचाने माना?
पहचान कर भी मानेंगे, पहचान कर भी मानेंगे,
पहचान करके माना है, जब तो बात खत्म होगी तो आपका काम चालू हो जाएगा, भूमिका का काम चालू हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लिया, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, हजारों लोग मानते हैं, गुरुदेव बहुत प्रभावित थे, हजारों लोग मानते हैं, हम भी मानने लगे कि हमारे पिताजी मानते थे इसलिए हम मानने लग गए, हमारे शिक्षण भी लोग मानते थे गुरुक्षुद इसलिए हम मानने लगे, हमारे मंगल वाले मानते थे इसलिए मानने लग गए, ऐसा नहीं चलता। स्वयं की पहचान होने चाहिए।
ऐसी पहचान करके अगर मानेंगे फिर क्या वो उसके एक भी वचन को गिरने देगा?
ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता। मुमुक्ष के ऐसे परम तीव्रता रखने वाले मुमुक्ष के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं, और जब वो पहचान लेते हैं तो उनके जो वचन है उनको आग साफ कर लेता है, सिरोधारी कर लेता है, तो वचन को गिरने देते हैं नहीं। और उनके वचन है इसलिए नहीं, मेरा परम कल्याण का कारण है ऐसा उसमें उनको लगता है, आशीष होता है। तो जिसको अपना कल्याण करना भी है और कल्याण करने के लिए वचन योग भी मिलता है तो जिसको कल्याण करना है क्यों नहीं उठाएगा
उसमें? आपको आती है कि को गिनने देगा ही
नहीं। सवाल क्यों गिनने देंगे? क्या हमारे हाथ से हीरे के पुड़ी हमारा हाथ में हम तो गिरने देते हैं है? क्यों? भैया आपका गहना बनाने के लिए, नेकलेस बनाने के लिए ये इतना हीरा के पुड़ी लाए हैं घर में, फिर सोने को देंगे, अच्छा आप हीरे का नेकलेस बना देंगे, हीरे को गिरने देते हैं क्या हा? बच्चे को खेलने देते हैं क्या? हम भी खोलेंगे तो कितने सावधानी से खोलेंगे देखने के लिए, एक भी इसमें गिरे इसमें क्या है? घर में गिरता था तो मिल जाएगा ऐसा रखते क्या? घर में तो बैठे बैठे देखते हैं, इतना भी नहीं रखते कि घर में गिर जाता है तो क्या आपत्ति है?
वो तो सब विवेक है, अच्छा बाकी
वहाँ तो सब विवेक है।
नीचे कपड़ा रख के गुड़िया को नीचे कपड़ा रख कर
वो इसका खास डिश आता है, इसका वेलवेट का डिश आता है, वो भी वो ब्लू कलर का आता है या ब्लैक कलर का आता है, तो गिरता है तो दिखता है कि देखो ये हीरा इतना बड़ा है। तुम सफेद कपड़ा नहीं रखते कोई पंद्रह सौ के सीधा नजर में आ जाए, यहाँ तो सब विवेक होता है, वहां तो सब प्रकार का विवेक होता है, क्योंकि कीमती चीज है। तो क्या सतपुरुष के वचन कीमती चीज नहीं है क्या?
पूछते हैं
हमको प्रश्न उठता है ऐसा क्या ऐसा क्या देखो क्या हुआ है। इस बात का स्मरण दिनाकर में लिखा हो कि चौथे काल में की तरह पंचम काल में भी बहुत जीव मोक्ष में जाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारा तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, अथवा मोक्ष प्राप्ति का वो कारण नहीं बनेगा। और ये तो मात्र बात है, इसलिए प्रतिकूल वचन भी मात्र बात है। ये दोनों बात लिखी हो अथवा एक ही लिखी हो तर्क लगाते हैं, दोनों बात लिखी हो मात्र बात या तो एक बात लिखी हो अथवा अव्यवस्थित कोई बात रखी हो तो भी यह बात कोई बंद मोक्ष का कारण है? बात कोई बंद मोक्ष का कारण नहीं है, बात से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अविवाद नहीं करना चाहिए। वहां पर बंद दशा हो बंद दशा है और मोक्ष दशा है, वो मोक्ष दशा है, बात से कोई दशा का संबंध होता नहीं है कि किस ग्रंथ में कौन सी बातें लिखी है, इससे कोई लेना देना नहीं। शायिक दशा वो शायिक दशा है और अन्य दशा वो अन्य दशा है, श्रवण वो श्रवण है, मनन है वो मनन है, परिणाम वो परिणाम है, प्राप्ति है वो प्राप्ति है, ऐसा सत्पुरुष का निश्चय है। इसलिए बंद है वो मोक्ष नहीं और जो मोक्ष होता है वो बंद नहीं, जो जो है तो सो है, जो जो स्थिति में है वो उसी स्थिति में है। बंद बुद्धि जिसको कभी नहीं, मैं बंधा हुआ हूं अनादि से, मैं परिभ्रमण करके बंधा हुआ हूं, ऐसा बंधन वाला ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जिसका अभिप्राय है वो बंद बुद्धि वाला जीव है। आत्मा केवल संसारी है ऐसा नहीं है, मूल में आत्मा मुक्त स्वरूप है, संसारी नहीं है। लेकिन जिसको बंद बुद्धि कभी नहीं और मोक्ष या जीवन मुक्त का मानने में आ जाए, अरे हम तो मुक्त है बंद बुद्धि में पड़ा है और स्वच्छंद से शुष्क ज्ञानी होकर के हम तो मुक्त है ऐसा मान ले, तो इसमें कोई सफलता नहीं है, इसमें कोई मुक्ति नहीं होगी। उस तरह से शारीरिक दशा मोक्षाई, अपोक्षाई दशा को शारीरिक दशा मानने में आए, जो सम्यक दर्शन शारीरिक नहीं है फिर भी अक्षाई के फिर भी शायद मानने में आए, तो इसका कोई सफलता नहीं है। मात्र मानने से फल नहीं है, दशा से फल है। मान लेने से क्या होता है, हम मान ले के हम सारी दुनिया का राजा है तो क्या मानने से कोई हो जाता है क्या? मान लेने से कोई फल
नहीं। ऐसे अगर हम पहले मान ले हम आत्मा है तो ज्ञान और राग ये भिन्न भिन्न है, ये हम कैसे पहचानेंगे?
ज्ञान का वेद ज्ञान होने के बाद ही आत्मा के रूप में मान्यता होती है।
नहीं, हम पहले से ही ये निश्चित कर ले हमें तो आत्मा ही हूँ।
और कैसा आत्मा हूँ तो कैसा आत्मा?
नहीं, जो निरालंब निरपेक्ष है ऐसा पहले ही मान ले तो फिर हमारे जो राग के परिणाम चल रहे हैं फिर भी हम अपने आप को ये मान के रखें तो ज्ञान और राग में हम भिन्नता करेंगे कि प्रज्ञा छेनी हम डालेंगे कहाँ?
जिसको राग का उल्लंघन बरतता है, देहादि का उल्लंघन बरतता है, तो आत्मा को निरालंब निरपेक्ष उसने माना नहीं, कहा माना ही नहीं है, फिर भी माना नहीं है, फिर भी सम्यक हमने मान लिया तो ऐसा मानने से क्या होने वाला है? इसलिए जिस क्रम से स्वरूप की मान्यता स्वरूप के रूप में होती है, आत्मा की मान्यता आत्मा के रूप में होती है, उस क्रम को ग्रहण के बिना वो मान्यता सही होती नहीं है। ऐसी बात, ऐसे वो मान्यता सही नहीं होती, तो कल्पना है, मान्यता नहीं है, हम मानते हैं ऐसी कल्पना है। मानने वाले को तो मान्यता अनुसार अनंत गुणांश सर्व गुणांश के सम्यक्त्व सर्वगुण की शुद्धि चालू हो जाए, उसी को माना है। ऐसा कहने में मान्यता तो सरकार में होती है, सम्यक्त्व में मान्यता होती है, सर्वगुणांश वो सम्यक्त्व, अकेली मानना हमने मान लिया ऐसा नहीं चल
सकता। फीलिंग सही तो होता है, फीलिंग सही तो होता
है, हाँ उसका अनुभव होता है कि शायद मैं ऐसा आत्मा हूँ लगता है, अनुभव में आता है, पर इसका अभेद अवलंबन रहता है, मान्यता होते ही इसका अभेद अवलंबन रहता है, अलग नहीं रहता है मैं ऐसा आत्मा हूँ कोई 100% थोड़ा है,
वरना प्रतिबंधक कारण कोई भी सामने आते मैं आत्मा हूँ छूट जाता है।
पकड़ाई कहा है तो छूट गया, प्रतिबंध में तो पड़ा है, और प्रतिबंध कारण सामने आते उसमें ही तदा कर रहता है, वो मान्यता कल्पना है, वो कल्पना भी वहां उपस्थित नहीं हो सकती, तो कल्पना और छूट हो जाती है, कल्पना भी उसकी टिकती नहीं है क्योंकि उसकी कल्पना में कोई ताकत नहीं है, क्या करेगा बेटा? इसलिए इस तरह से मानने का कोई फल नहीं है, लेकिन दशा का फल है। जब यह बात इस प्रकार से है, जब यह परिस्थिति इस प्रकार से है, तब अब अपना आत्मा अब कौन सी दशा में है उस प्रयोजन की बात उठाई। जब कुछ भी बातें लिखी हो शास्त्र में, बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन जो दशा है वो दशा है, जो दशा नहीं है उसका मानने से कोई फल नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या? हम तात्पर्य पर आते हैं, प्रयोजन पर आते हैं। जब बात इस प्रकार से है तो अब हमारी आत्मा अब कौन सी दशा में वर्तमान में फिलहाल चल रही है, बढ़ रही है, प्रक्रमण कर रही है, और शायद संकित की जी शायद सम्यक दृष्टि जीव की जो दशा होती है उसका विचार करने के भी लायक है कि नहीं, उस दशा के लायक नहीं बोल रहे ऐसी बात नहीं है। देखो तुम विवाद करते हो कि अभी इच्छाइक्षम कितने होता, जिनागम में नहीं लिखा है, जिनागम में वो लिखा है, लेकिन तुम इस दशा का विचार करने का पात्र है, उस दशा के पात्र तो तुम है नहीं, लेकिन उसका विचार कर सके यथा योग्य रूप से उतने भी कोई क्षमता है, उतनी भी कोई योग्यता है, कोई सोचता है कि तुम कहाँ चलते हो, तुम्हारी योग्यता पात्रता वर्तमान में कौन सी है, कुछ मालूम है कि बस विवाद ही करते रहते हो, क्या बात है।
ऐसी आकर यहाँ देखिए यथार्थ मुमुक्षु का परिणमन कैसा होता है वो विचार करने की भी शक्ति नहीं,
उतनी भी पता नहीं, तो क्षय संकेत की बात करते हैं कि जो क्षय संकेत के विषय में ऊपर क्या लिखा कि जिसको एक नवकार मंत्र बोलने का भी नियम नहीं होता है, फिर भी ऐसा जिनको वही भाव में मोक्ष हो जाता है या ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में तो हो ही जाता है, तो बाहर में जिसको उतना भी नियम नहीं हो फिर भी जिस संक्षायिक समय दर्शन के प्रभाव से मुक्ति उतनी समीप होती है, वो दशा का विचार करना चाहिए कि दशा कैसी होगी, उसको विचार करने की भी योग्यता नहीं है तो प्राप्त करने की तो योग्यता होगी कहां से, ये बात कहते हैं लोग पूछते हैं शिविर में आते हैं, खास करके ऐसा प्रश्न आता है समय दृष्टि जीव का बाह्य लक्षण क्या होता है, उसको कैसे पहचाने, बार बार ये प्रश्न आता है, कोई समय दृष्टि जीव को बाह्य लक्षण होता ही नहीं, फिर बाह्य लक्षण से पहचानने का सवाल भी पैदा होता ही नहीं, प्रश्न ऐसा क्योंकि हमारी तो बाह्य दृष्टि है, तो बाहर में हमें कुछ ऐसा दिखा दो तो हमको पता चल जाए कि यह समय दृष्टि है, लेकिन ये बाह्य दृष्टि का विषय नहीं होता, ये अंतर दृष्टि वाले का विषय होता है, बाह्य दृष्टि वाले का विषय नहीं होता। तो बहुत से लोग कहते पड़ेंगे हम भी समय दृष्टि है, हमको भी समय दर्शन हुआ है, तो कैसे मान ले हम,
प्रश्न है क्या सम्यक दृष्टि अपने मुंह से कभी बोलेगा मैं सम्यक दृष्टि हूँ बनवाएगा, फिर तो ज्ञानी का ये वचन झूठा साबित हो जाता है कि ज्ञानियों का सनातन आचरण है गुप्त रह के वर्तन करने का,
वो तो है ही लेकिन हमारे संसार में भी कहवत है कि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मूल, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो जो कहता है तो क्यों एडवर्टाइज करता है, क्या जरूरत होगी उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत कौन सी है उसमें,
जहाँ कषाय का पोषण हो, जहाँ मान कषाय का पोषण की अपेक्षा हो वहाँ संकित हो ही नहीं सकता है,
अपेक्षा होती दिन होती समय दृष्टि को होती, अगर होती है तो उसने अपना परिक्रमण दृष्टि को देखा तो वो गड़बड़ी होती है, वास्तव में बात वो है कि समय दर्शन है कि नहीं है ये कोई कहने सुनने का विषय नहीं है, किसी के कहने से माने नहीं कहने से नहीं माने ये ऐसा विषय नहीं है, न कहने की बात होती है न सुनने की भी होती है, वो पहचानने की होती है, अगर पहचानने की योग्यता हो तो पहचान सकते हैं, नहीं पहचानने की योग्यता है तो नहीं पहचान सको, सीधी बात
है। मुमुक्षु सत्पुरुष में सत्पुरुष की क्या पहचान करते हैं,
उसके अंतर्दृष्टि को उसके परिणत को पहचानते हैं, मूल दशा को पहचानते हैं, वो भीतर में परमात्मा है स्वरूप निज स्वरूप, उस परम स्वरूप की स्वरूपाकार दशा से पहचान लेते हैं, वो दशा अंतर्दशा है, वो अंतर्दृष्टि का विषय है, वो बाह्य दृष्टि का विषय नहीं है, अगर बाह्य दृष्टि का विषय होता तो सब पहचान लेते हैं, और उतनी योग्यता आती है वो जीव निर्वाण का अधिकारी हो जाता है, समय दर्शन का नहीं, समय दर्शन तो हो गया कहने की जरूरत भी नहीं, लेकिन वो निर्वाण का अधिकारी अपना फल है पहचानने का,
मतलब जीव आत्मा से आत्मा का निर्णय करता
है, हाँ आत्मा से आत्मा का निर्णय होता है। द्राक्षात्म का निर्णय नहीं होता। इसका मतलब क्या है? निमित्त से बाह्य चिन्ह से, बाह्य चिन्ह मैंने निमित्त, निमित्त से भी निर्णय नहीं होता और राग से भी नहीं होता। ज्ञान से होता है तो आत्मा से होता है, क्योंकि आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा है। अपने हमारी दशा कौन सी है और जो हमारी दशा है उस दशा में हम शायद संकेत जीव की समुद्र सम्यक दृष्टि जीव की दशा का विचार करने लायक है कि नहीं है, अथवा शायद सम्यक दर्शन से नीचे वाली दशा अथवा शायद सम्यक दर्शन से ऊपर वाली दशा का विचार, यह जीव मैंने हमारा जीव यथार्थ प्रकार से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इतना ही विचार करना जीव को श्रेष्ठ है। अपनी दशा का तो ठिकाना नहीं, क्या अपनी दशा कैसी चल रही है इसकी समझ का भी ठिकाना नहीं है। पर ज्ञानी ऐसे होते हैं, ज्ञानी वैसे होते हैं, ज्ञानी के जजमेंट लिखने बैठ जाते हैं, वो बात तो बराबर। ऐसा देख जाता हम अनादि से करते हैं, जिसका विचार करने की हमारी योग्यता नहीं है उसका तो अभिप्राय दे देते हैं तो ऐसे है कैसे है, वो बात तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं
है। भाई श्री आत्मा में तो स्व पर प्रकाशक गुण है, पर स्व प्रकाशक गुण नहीं। आत्मा में स्व पर प्रकाशक गुण है, पर स्व प्रकाशक गुण नहीं है।
फिर भी हम एकांत पर प्रकाशक गुण रखते हैं तो वो ज्ञान बेकार जाता है, वो पर प्रकाशक गुण सही नहीं होता, दोनों साथ में होना चाहिए। ऐसे तो वेदन में तो है, ज्ञान वेदन में तो है, लेकिन पर के साथ अपनत्व का एकत्व का उतना गाढ़ निश्चय वर्तता है कि स्व का वेदन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा धारण करता नहीं है। ये हालत है। परंतु अनंत काल होने के होने हुआ, परंतु अनंत काल हुआ जीव ने ऐसा विचार किया नहीं। कैसा विचार नहीं किया कि हमारी योग्यता कौन सी है, हमारी वर्तमान योग्यता किस प्रकार की है, इसका विचार अनंत काल से नहीं किया। सम्यक दृष्टि का जजमेंट लिखा लेकिन हमारी दशा कौन सी है इसका विचार नहीं किया। अगर हमारी योग्यता का हमें भान हो तो हम हमारी योग्यता से एक कदम कैसे आगे बढ़े इसका यथार्थ समझ हमको मानना पड़ेगा, यथार्थ समझ आएगी। और इस दिशा में आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े तो पूर्णता का अनुसंधान इस कदम के साथ है, ऐसा कोऑर्डिनेशन बनेगा। लेकिन जिसको वर्तमान दशा का भान नहीं है उनको आगे कहाँ बढ़े और पूर्णता की दिशा किस तरफ की होती है कोई पता उसको होता नहीं। बहुत प्रयोजनभूत बात लिखी है कि अनंत काल में जीव ने ऐसा विचार नहीं किया कि हमारे आत्मा फिलहाल किस दिशा में वर्तती है। अरे विचार तो नहीं किया लेकिन ऐसा विचार करना चाहिए, विचार करना योग्य है ऐसा उसको लगा भी नहीं है। विचार करेगा कहां से, उनको वो भी नहीं लगा है कि मैं मेरी वर्तमान दशा का तो विचार करूं कि मैं कहां चलता हूं, वो भी उसको नहीं लगा। उसने विचार किया नहीं, ऐसा विचारना योग्य है ऐसा उसको भाषित भी नहीं हुआ, लगा भी नहीं, और निष्फल रूप से सिद्धपद तक का उपदेश जीव अनंत बार कर चुका है और उपदेश देगा सिद्धपद का। वर्तमान दशा का तो ख्याल ही नहीं कि मैं कहाँ वर्तता हूँ, और अनंत बार सिद्ध पद का उपदेश दिया है, अपनी दशा का मान है, ऐसा हो चुका है। योग ऊपर बताया है, इस प्रकार के विचार किए बिना जीव कर चुका है, विचार करके यथार्थ विचार करके ऐसा नहीं किया, सिद्ध पद तक का उपदेश दिया, ऐसा मुझे बनो, ऐसा दीक्षा लो, वो करो, ऐसा करो, कचका करो, किनारा करो, किनारा ये क्रिया करो, वो विधान करो, सब कर चुका है, यथार्थ विचार किए बिना। तो यहाँ तक की बात कही कि किसी भी शास्त्र के वचन को लेकर के न विवाद में जाना है, न कोई बात का आग्रह करना है, रखना चाहिए, और अपना वर्तमान प्रयोजन को समझ करके अपने प्रयोजन के विषय में हमें विचार करना, ये प्रयोजन स्वरूप बात है और वही आवश्यक है। आगे और दूसरी बात है,
पर